Hello and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. रोज की तरह हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजारों पर नजर डालेंगे और प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे. वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे आज हमारे साथ हैं समाचारों पर चर्चा करने के लिए. उदयन, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद सुबोध जी.
पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा.
थैंक यू सुबोध. Benchmark domestic indices extend rising streak for fifth straight session. Sensex closes around 81,860. Nifty reclaims 25,000 level. Next generation of GST reforms aim to make India Atmanirbhar, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. And crude oil prices rise over 1%.
शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में तेजी. सेंसेक्स लगभग 81,860 पर पहुंचा. निफ्टी फिर से 25,000 के पार. आगामी जीएसटी सुधारों का लक्ष्य है देश को आत्मनिर्भर बनाना, कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने. और कच्चे तेल की कीमतों में 1% से ज्यादा का उछाल. आइए देखते हैं कि देश के शेयर बाजारों का क्या हाल रहा. आईटी क्षेत्र के शेयरों में लिवाली की वजह से आज देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में थोड़ी बढ़त देखी गई. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में सकारात्मक बने रहे. आज सेंसेक्स 213 अंक यानी लगभग चौथाई प्रतिशत बढ़कर 81,858 पर बंद हुआ. निफ्टी 70 अंक यानी 0.28% बढ़कर 25,051 पर बंद हुआ. बीएसई के मिड कैप सूचकांक में 0.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए. सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो इन्फोसिस में लगभग 3.9%, टीसीएस में 2.7% और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2.5% का उछाल देखा गया. सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर गौर करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 2.1%, बजाज फाइनेंस में 1.6% और टाटा मोटर्स में 1.5% की गिरावट देखी गई.
Benchmark domestic equity indices today ended with modest gains driven by buying across IT pack. Both the indices extended their winning streak for the fifth consecutive session. The Sensex rose 213 points or 0.26% to close at 81,858. And the Nifty gained 70 points or 0.28% to settle at 25,051. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap index added 0.4% and the small-cap index advanced 0.3%. Subodh just told you the behavior of the companies in the Sensex pack. Let me tell you about how the sectoral indices at the BSE panned out today. In the sectoral indices at the BSE, 14 out of 21 sectors ended in positive territory. In top gainers, focused IT jumped 2.7%, IT rose 2.6% and tech increased over 2.2%. Among top laggards, financial services as well as the BankEx both dropped 0.33% each. Healthcare dipped 0.2% and oil and gas along with energy dipped over 0.1% each.
और देखें रुपए का हाल क्या है. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में आज रुपया 12 पैसे गिरकर 87.07 रुपए पर बंद हुआ. दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 98.26 पर कारोबार कर रहा था. तो अनुभव, चलते हैं उदयन के पास कि क्या हाल रहा है बाजार का और क्या क्या दिखा रहा है बाजार. उदयन, बाजार लगातार हम बता चुके हैं कि पांचवें कारोबारी सत्र में सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन जिस तरह की खास करके जो जीएसटी में कटौती की घोषणाएं आ रही हैं, जो उत्साह दिख रहा था उस पर कुछ बॉन्ड्स की मार से बाजार थोड़ा संभला हुआ लग रहा है. उतना नहीं उछला है जितना हम उम्मीद कर रहे थे. और बाकी भी देखें, आज वैसे निफ्टी का ये लग रहा है कि चलो फिर से 25,000 के पार तो पहुँच गया, एक थोड़ी राहत ये दिखाई दे रही है, लेकिन सेंसेक्स भी बहुत सहमा सहमा सा बढ़ रहा है।
देखिए वो जिसे हेडलाइन ड्रिवन सुर्खियों से प्रभावित, तो मार्केट का मूवमेंट वो खबरें कैसी आ रही हैं, जब अनिश्चितताएं होती हैं तो आपको खबर चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए आपको
सेंटिमेंट्स,
हाँ सेंटिमेंट तो है वो रोल प्ले करती है। प्योर अगर इन्वेस्टमेंट, प्योर अगर निवेश, शुद्ध निवेश का जो डिसीशन होता है, निर्णय होता है, वो आंकड़े और सूचनाओं के ऊपर होता है, पर सेंटिमेंट आ जाते जैसे आपने कहा, तो उससे उससे मोमेंटम, दूसरी चीज़ें आ जाती है। तो अभी जो जितनी मूवमेंट आप देख रहे हैं ये सारे सुर्खियों, हेडलाइन ड्रिवन है। ये अगर यूक्रेन संघर्ष में अगर कुछ रेजोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है तो फिर हमें लगता है कि शायद बेहतर हो जाए, कोई और बुरी खबर नहीं आ रही है तो अच्छा, वो एक पॉजिटिविटी आ रही है। जीएसटी की जो खबर है वो हेडलाइन ड्रिवन है जबकि उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट्स आने में उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है सिस्टम में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये हेडलाइन ड्रिवन है, तो इसके बारे में हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ये फंडामेंटल्स उतना नहीं जितना हेडलाइंस के ऊपर है।
उदय, यू आर सेइंग दैट इट्स लाइक बेसिकली द वे द मार्केट्स आर बिहेविंग, एज सुबोध सेड, थोड़ा सहमा हुआ मार्केट है, बहुत ज्यादा उसमें हम गति नहीं देख रहे हैं, हालांकि पॉजिटिव ही रहा है। सो द पॉइंट इज, इफ यू लुक एट द सेक्टरल इंडिसीज, वी सी टुडे दैट द मार्केट्स ऑफ गेन्स, हाउएवर मॉडेस्ट दीज गेन्स वर बेसिकली ड्रिवन बाय बाइंग अक्रॉस आईटी पैक, विच इज अ गुड न्यूज, बिकॉज इफ यू लुक एट द सेक्टरल इंडिसीज ऑल्सो, the top gainers were all IT related. There was focused IT that jumped 2.7%, IT rose 2.6%, and the tech sector increased 2.2%. So what's driving this buying across IT pack? Because it's we've seen in the last few months that it was IT was one of the, you know, sectors which was not finding favor.
Well, to be honest, I would rather see it as more of a sectoral on the part of investors. A sectoral rotation kind of a play. Yes, of course, there was one of the large IT companies put out information that they've won a large order in the Nordics, and that's a big order and significant one. So these things happen, but this is not anything out of the ordinary or okay. out of step. Fundamentally, does it change? I doubt whether it changes things. Maybe they've done a move here and there, tinkered, maybe they've tinkered, rationalized the manpower, made it more right aligned. But these things don't change. It's not a dramatic change, okay. You know. I mean, if you compare it 30 days before, what has happened in the past 30 days to merit substantially significant difference in the way you look at Indian IT stocks? If you see the pros and cons, you'll probably see more that is not making you excited rather than those factors that will okay. make you excited. So I would imagine that these are more tactical plays, uh-huh. rotation. You know, you see that there's value out there. So these are very sophisticated investors who are going there and moving in and buying. Or maybe your people who are buying through mutual funds, the fund houses and other large institutions, domestic institutional players are looking at it. But one of the things we need to remember uh-huh. is this, that till foreign institutional players start getting more confident, some of those things that investors are used to, the market's always going up and new highs coming up, and you know, you yawn and say, oh, another new high today, mm-hmm. which we were so accustomed.
Yes, in we the were past. Getting very accustomed to
yeah
it.
So that habit probably will not be working for us. It'll be more like the markets that are there in the rest of the world. And maybe that was one of those periods of revelry, which extended for a long period of time. But now it is mostly you'll have to look at the individual stories, and you can't just say that this sector will work or this industry will work. You'll probably have to see what individual sectors are promising you, or rather individual stocks are promising you.
Ji, charcha hum aage bhi jari rakhenge, abhi waqt hai ek chote se break ka. ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र आकाशवाणी पर। और उदयन, हम शेयर बाजार पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आपने कहा कि चलिए आगे चलकर देखना पड़ेगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बाज़ार को प्रभावित कर सकते हैं, और एक्चुअली बहुत बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप सीरियस निवेशक हैं तो। लेकिन अभी और क्या, जो जो अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां दिख रही हैं अब कुछ सकारात्मक होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर हम फिलिस्तीन और इसराइल वाले मामले पर भी देखें तो एक तरफ से युद्ध विराम की बात कहीं से शुरू हो रही है, हालांकि हमले रुके नहीं हैं। लगभग वही हालत रूस और यूक्रेन के बीच भी है। इन सब के बीच क्या लगता है, थोड़ा टैरिफ का डर कम होगा जो हम पर छाया हुआ है, और इससे एक नई दिशा मिलेगी जो जो सारी गतिविधियां हम देख रहे हैं अभी जो चल रही हैं?
देखिए सुबोध जी, मैं इस चीज को ना पूरा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टर्निंग द होल मैटर ऑन इट्स हेड, बस मतलब बिल्कुल शीर्षासन कर देना चाहता हूँ। आप ऐसे देखिए कि हम अगर निवेश करते हैं, किसी किसी लक्ष्य को पाने के लिए निवेश करते हैं, तो आप देखेंगे मार्केट में जब कंपनियां आके पैसे उठाती हैं तो उन्हें बताना पड़ता है किस कारण से वो उठा रही। तो आप अगर निवेश करते हैं, सबसे पहले तो आपके पास एक कारण होना चाहिए। तो अगर वो कारण अगर है, तो मान लीजिए आप आज से 10 साल बाद आपके आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो टैरिफ 2025 में कहाँ ऊपर से नीचे जा रहा है, फिलिस्तीन और गाज़ा में क्या हो रहा है, 10 साल बाद वो एक छोटा सा ब्लिप होगा रेडार, अगर बहुत बड़ा स्क्रीन है। तो हमें अगर हम ये करना बड़ा मुश्किल होता है, ये चारों तरफ इतना शोर शराबा, इतनी खबरें दी जा रही हैं, एक्सपर्ट हम जैसे लोग भी बोल के कन्फ्यूजन ही बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का एक ओवरलोड है, कुछ ज़्यादा ही है, और फिर हम लोग मोबाइल फ़ोन में भी हम देखते हैं। तो अगर हम एक कुछ पल के लिए आँखें बंद करके ये सोचें कि जब हमें ये पैसे चाहिए होंगे उसके लिए हमें क्या करना है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें अलग साइड में हो जाती हैं। तो अब क्या होता है कि आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी कि किसी देश के राजधानी में वहाँ के राष्ट्रपति सुबह उठ के क्या करते हैं, वो आपके आपका आपके आपके बच्चे को कॉलेज जब जाना है उसके साथ उसका जो लिंक बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो वो तो देर नहीं हो सकता, आप अगर रिटायरमेंट करना चाहते हैं वो देर नहीं हो सकता, घर अगर खरीदना चाहते हैं वो देर नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीज़ें, तो ऐसा आपके पास अप्रोच होना, रणनीति होनी चाहिए जो इसके साथ जुड़े नहीं हो सकते। तो अब तरीका ये है कि या तो आप हर पल मार्केट किधर जा रही है, सोने के भाव कहाँ जा रहे हैं, वो वाला काम कर सकते हैं और बाकी सब काम छोड़ के। दूसरा ये है कि आप उसको इतना सिंपल रखें कि आपको आप ये एक छोटा सा हिस्सा है और जिसमें टाइम ज़्यादा ना लगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ मार्केट मंत्र में जो अभी पीछे मैंने जिन कैटेगरी के लोगों को बताया वो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे। अगर ऐसा है तो सिंपल आप रखें कि आप निवेश जैसे कर रहे हैं वो करते चले जाइए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे थे, मतलब सिंपलिस्टिकली बात बात कर रहा हूँ, या कुछ बड़े स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के पैक में या निफ्टी 100 के पैक में कर रहे थे, तो आप बरकरार रखिए, आप उसको चेंज मत करिए। क्योंकि जब आप एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में, मैं बाकियों की कंपनी की बात नहीं कर रहा, जो मल्टी बैगर जिसे कहते हैं, एक मल्टीपल जो देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब आपके बेस्ट कंपनीज में आप निवेश कर रहे हैं, और ये अगर भारत प्रगति करेगा ये भी प्रगति करेंगे, ये एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है जिसको आप बाय कर सकते हैं। पर ऐसे मौक़ों में सुबोध जी, मुझे ये ऐसा भी लगता है कि जिस टाइप की अनिश्चितताएं हैं, सिर्फ आप अगले 2 साल में शेयर बाजार में निवेश करके वो जो रिजल्ट 10 साल बाद या 5 साल बाद, 5-6-7 साल बाद जो चाहिए या उससे बाद में चाहिए, उससे शायद ना करें। जब हम निवेश करते हैं तो कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, जैसे एवरेज होता है, अच्छे खिलाड़ी बैटिंग में एवरेज करते हैं, तो हर इनिंग कितनी कंसिस्टेंसी के साथ निवेश मतलब रिजल्ट निकालते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए इन ये पहले ये इस 2025 और 26 में आपको फिक्स्ड इनकम में और गोल्ड जैसे जगह में निवेश करना पड़ेगा। तो लोग बिरयानी
बेसिकली एक इंडियन थाली होनी चाहिए,
बिल्कुल
आपको सब कुछ थोड़ा
होगा। कई लोग एक सिंगल डिश लेते हैं आला कार्ट, ये थाली का टाइम है।
चलिए अगली खबर पे नजर डालते हैं। एशिया के प्रमुख बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% से ज्यादा बढ़ा, हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% बढ़ा, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया, जापान का निक्केई 1.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% नीचे आ गया। ताज़ा समाचार मिलने तक प्रमुख यूरोपीय बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखाई दे रहा था। लंदन का फुटसी लगभग 0.5% ऊपर चल रहा था, फ्रांस का कैक 0.2% ऊपर है, जापान जर्मनी का डैक्स 0.3% नीचे चल रहा था। ब्रिटेन के उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के आंकड़े आए हैं, ये जुलाई में बढ़कर 3.8% तक पहुंच गए हैं, जबकि जून में ये 3.6% पर थे। जुलाई का कोर इन्फ्लेशन 3.8% हो गया, जो मई में 3.7% था।
Moving on to the US markets, US stocks displayed mixed trend on Tuesday. The Nasdaq composite lost over 1.4% and the S&P 500 dipped 0.6%, dragged by technology stocks. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average ended flat with a positive bias. A very quick comment, Udayan, because we've been seeing that the Nasdaq has been performing very well. The S&P has been, you know, climbing, getting onto new records every day. So what has happened today? Like, you know, why is this kind of a mixed trend coming in? Is it also because, I'm not sure, but there is an FOMC meeting today, later today, where the reasons for the decisions taken in the last meeting are going to come out. So could it be that the markets are again in a wait and watch kind of a mode?
Yeah, that's interesting. That's an interesting point that you're making. There's been a lot of investors have been betting a lot in terms of how much the Federal Reserve is going to cut. Some people think it's going to be 25 basis points. Some people think 50. So that is one. But the other part also is that every day brings a new headline. Talking about headline. So a stake in Intel, chips that Nvidia can sell. Now Nvidia has been powering the markets. Now if that is what's going to happen, if every day is going to be entertainment in this way, then that is what it's going to be. Then entertainment is going to be is what you're going to get. So of a whatever kind, if you enjoy that, good luck. So that's how it's going to be. So what I'm trying to indicate is that sometimes these things you don't have to, you just internalize the information and don't get too, try to see too many things in it.
Don't overanalyze it. Yeah. Just take it.
Yeah, because then you'll probably go nuts because you can't be doing, this can't be a full-time job.
Right, exactly. So let's move on. And this next story is coming in from India. India's infrastructure output as measured by the combined Index of 8 core industries, ICI, has increased by 2% in July this year compared to the same period a year ago. 4 of India's core sectors, including steel, cement, fertilizer and electricity, recorded positive growth during the last month, according to the provisional data released by the Ministry of Commerce and Industry. Steel production witnessed a robust growth of 12.8%, cement production increased by 11.7%, fertilizer production gained 2%, and electricity generation was up by 0.5%. Conversely, coal production plunged 2.3%, natural gas dipped by 3.2%, crude oil production fell by 1.3%, and petroleum refinery production was down by 1% in comparison with July last year. And before we discuss this story, let's go in for a quick commercial break. Welcome back to Market Mantra, where we are joined today by Udayan Ray. Udayan, we are talking about the core industries data. We see that July, it has increased a modest 2%. And if we look at the June numbers, the revised June numbers, which have come in, 2.2%. Modest increase, what does it, indicate?
Well, it's a good headline and we'll take all the good headlines that come. It'll be interesting to see how we shape up in the days to come. My sense, I will not be able to furnish data-based arguments, but my gut feel, I would say, is that we will continue to do okay. We will show resilience for which we are known.
Yes.
And you can guarantee. So resilience, we come when it's India, resilience and rising up to the occasion is a guarantee.
Right.
So whether you want to believe it or not, I'll leave it to you. I can spend a whole day giving you examples of it.
Right.
But where the challenge is going to be is growth.
Right.
Being resilient is fine, but we need to grow. We need to. There are many, many millions of people who need to be brought to the kind of living standards that you and I are enjoying. And we are part of that population who have benefited from a lot of right. facilities. So for that, you cannot be having these growth rates. You'll have to perk it up very substantially. When international trade is going through the kind of mayhem that it's going through, that's an important source. It's very fine to say that we are domestic consumption or growth driven, but we need the rest of the world as well, because for obvious reasons, they are well documented. So in that absence of that, the government and everybody saying, which is the obvious, you know, you unleash, dormant energies, come up with another round of reforms, which I think are in the works.
Right. But like you said, I'll just, add here, like you yourself said, that India is known for resilience. So given the kind of international situation that is there, we see trade is being affected, everywhere the economies are being affected. So even in that scenario, a 2% increase, in the infrastructure output is not a bad, I would say, because at least we're continuing to grow vis-a-vis a lot of other economies.
Yeah, you put another person out here and they'll pick
right.
Holes, etc. But I'm okay with this. I'm right. okay. We'll take all the good headlines.
Right.
चलिए अगली खबर पे चलते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में आगामी सुधारों से देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मदद मिलेगी. उन्होंने नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की क्षतिपूर्ति उपकर स्वास्थ्य और जीवन बीमा तथा कर दरों को समुचित बनाने के लिए गठित मंत्री समूह को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. एक सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों से निर्बाध तकनीक आधारित और समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित होगा. भविष्य के सुधारों से त्रुटियों और विसंगतियों को कम करने में मदद मिलेगी और रिफंड जल्दी मिलेगा. क्या कहते हैं उदयन, अभी जीएसटी के लिए जिन सुधारों की उम्मीद की जा रही है, जो अभी रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, इनसे हम कितने दूरगामी प्रभाव देख सकते हैं?
एक तो सरल हो जाएगा, जितना और सरल हो उतना बेहतर है. पर जीएसटी के बारे में बात करते वक्त सुबह जी, हम हमारे देश की एक उपलब्धि को ना कई बार हम ओवरलुक कर जाते हैं. आपको मैं स्मरण करा दूं कि ये जीएसटी एक टैक्स कोड में चेंज था, पूरा एक तंत्र जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक एक कॉन्वर्सेशन, एक डायलॉग के थ्रू बना था. आप देखिए हमारे कितने स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहाँ से हमने एक सिस्टम बनाई, दिक्कतें आई, हम लोगों ने मिलजुल के एक सिस्टम तैयार किया और ये पूर्णतः भारतीय सिस्टम है. हमारे देश के जो तंत्र है, आर्थिक तंत्र में एक ट्रांसपेरेंसी, एक एफिशिएंसी लाने की कोशिश, एक सिंगल मार्केट, एक सिंगल टैक्स सिस्टम का आगाज करने की कोशिश की गई. तो ये एक एवोल्यूशन है, तो इसको हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा, ये उपलब्धि है
जी.
कई बार क्या होता है, हम इसको पीछे का हम भूल जाते हैं, बट ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है
जी. लेट्स मूव ऑन. द लोकसभा टुडे पास द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025. द बिल इनकरेजेस ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स व्हाइल prohibiting harmful online money gaming services. It has the provision for the appointment of an online gaming authority for coordinated policy support, strategic development and regulatory oversight of the sector. The bill is intended to protect individuals, especially youth and vulnerable populations, from the adverse impact of such games. While moving the bill, Electronics and Information Technology Minister Ashwani Vaishnav highlighted that online money gaming posed a serious concern in the society as it creates addiction, leading to financial frauds and cheating. A very quick comment from you, Udayan, on this, because there is one hand, of course, like the minister is saying, that it creates addiction, which leads to a lot of economic loss, financial frauds. But on the other hand, this is a sunrise industry, lakhs of jobs, thousands of jobs associated with it. There is FDI associated with it, so there'll be job cuts. There's also this fear of that, an illegal apps will proliferate. What do you have to say for that?
Well, it's better that if there's a house that you're building, you'd rather build it with bricks rather than with cards. This is a house of cards.
Right.
And the online scamming is on the rise. We have to cut down on it. And the important thing is about the illegal fund transfer.
Yes.
It's the same crypto issue that has, is coming here. And we have national security issues, and that has to be addressed.
चलिए अगली खबर पे चलें हम. विदेशी विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस के प्रमुख स्कॉलर्स और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत रूस संबंधों, समकालीन विश्व भू राजनीति और भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा की.
Let's move on to commodities. Crude oil prices rose over 1% today. Brent crude was trading 1.2% up at $66.88 per barrel, and WTI crude was trading over 1.3% up at $63.18 per barrel when reports last came in. Meanwhile, investors awaited the next steps in talks to end the Russia-Ukraine war. And let me also tell you, the gold and silver prices in the Indian bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading over 0.2% lower at 99,260 rupees per 10 grams, while silver was trading around 0.2% down at 1,11,730 rupees per kilogram a short while ago.
जी, और समाचार लिखे जाने तक MCX में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आधा प्रतिशत बढ़कर 99,176 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.58 प्रतिशत बढ़कर 1,11,994 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. उदयन, मार्केट मंत्र में आने और समाचारों पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices extend rising streak for fifth straight session. Sensex closes around 81,860. Nifty reclaims the 25,000 level. Next generation of GST reforms aim to make India Atmanirbhar, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. And crude oil prices rise over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. Do remember to join us tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar. Market Mantra.